Market Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम आपके लिए देश और दुनिया से चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ इन तमाम खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है लालिमा।
Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Indian markets snap five-day winning run with Nifty below 22,450. Sensex falls 609 points. Oil prices spiked as supply concerns lingered due to conflicts in the West Asia. Brent crude was trading at $89.58 per barrel. And gold gains 428 rupees in futures trade. Silver rises by 503 rupees.
शेयर बाजार में पांच दिन की बढ़त का सिलसिला थमा। निफ्टी 22,450 के नीचे पहुंचा। सेंसेक्स में 609 अंक की गिरावट। पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते आपूर्ति श्रृंखला में चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में बढ़त। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $89.58 प्रति बैरल और वायदा कारोबार में सोने का भाव 428 रूपये प्रति 10 ग्राम चढ़ा। वहीं चांदी की चमक 503 रूपये बढ़ी। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने पांच दिन की बढ़त के सिलसिले को आज तोड़ दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 609 अंक यानी कि 0.82% नीचे आकर 73,730 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 150 अंक यानी 0.67% की गिरावट के साथ 22,420 अंक पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की हम बात करें तो बीएससी मिड कैप सूचकांक आज 0.83% ऊपर आ गया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.27% के लाभ के साथ बंद हुआ।
Indian stock markets benchmarks, the Sensex and the Nifty snapped their five-day winning streak amid mixed global cues. Sensex closed with a loss of 609 points or 0.82% at 73,730, while Nifty 50 settled at 22,420, down 150 points or 0.67%. From the Sensex basket, TechM, Wipro and ITC were among major gainers. On the other hand, Bajaj Finance, Bajaj Finserv and IndusInd Bank were the laggards. In the broader market at the BSE, mid-cap sector jumped 0.83% while small-cap sector gained 0.27%. In sectoral indices at the BSE, consumer durable sector gained 1.53%, services sector added 1.34% and realty sector added 0.53%. In contrast, banking sector slipped 0.70% and financial services sector fell 0.68%. So, Harveer, what do you attribute this fall in Sensex to? We did touch 75K and that was a point of elation, and now we are hovering around 73,000 for quite a while.
Actually, if you see in the recent past in trading sessions, we have seen Sensex passed 75,000 points, then coming down, then there is a basically volatility in the market. And due to global region, a huge outflow of FPIs also happened within this time. That is also one of the reasons. Actually, geopolitical issues are also affecting the market. And the price, whenever something happens in the Middle East, so immediately impacts goes on the oil, and we are one of the largest energy importer in the world. So there are sentiments like that. At the same time, the way U.S. Economy is going, that is also affecting our market because yield has strengthened, bond yield in the U.S. That also affects the Indian market because in that scenario, investment becomes attractive there compared to us. And rupee depreciation is also happen, but I think it is good for the FPI so that they can get good value for the Indian stocks. Let us be hopeful.
Mm-hmm.
And you know that we are having Lok Sabha election.
Yes.
So there are multiple things and sentiments are there in any country, or particularly the market moves through sentiment. But otherwise, our fundamentals are good. We have just got information from Met Department. There will be a normal monsoon or normal rainfall all over the country. That is a positive sign for the agriculture sector and rural economy, and it directly have an impact on overall Indian economy. So that is there, and I hope that current Rabi crops are also good. So. But in case of food grain, inflation will be under control due to, I think, the procurement is happening, the progressive procurement is happening for wheat, and we will have a comfortable stock. Next few days will give that clear picture.
Mm-hmm.
So, I think if you see that, despite RBI also indicated about inflation due to the external factors are mentioned by RBI, otherwise things are reasonably okay for us.
हरवीर जी, हमेशा ये होता है कि विदेशी मार्केट को देख के हमारा मार्केट कुछ चेंज लाता है, और भी अमरीकी मार्केट का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है. खासतौर पे अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो वहां की जो ग्रोथ का जो डेटा है वो उनके मन मुताबिक नहीं है, और शायद चाइना के हाल भी इसी तरह के बताए जा रहे हैं. लेकिन इस बीच में इंडियन मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव हम देख रहे हैं, तो इसके पीछे किन कारणों को आप मानते हैं?
देखिए, ये तो बात सही है कि दुनिया की जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चाइना, वो दुनिया की इकोनॉमी को सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि अब कोई भी इकोनॉमी सिर्फ एक उस देश की इकोनॉमी नहीं है. ये एक इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज जो दुनिया है, उसमें हम हो या कोई हो, तो वैल्यू चेन्स हो या सप्लाई के इश्यूज हो या डिमांड के इश्यू हो, अगर कोई भी बड़ी इकोनॉमी उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं है तो वहां पर दूसरे फैक्टर्स आते हैं जो बाकी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, बिकॉज किसी के लिए वो इकोनॉमी मार्केट है, किसी के लिए वहां से सप्लाई आता है. तो ये दोनों इकोनॉमी का दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आता है. बट अभी भी जैसे मैं देख रहा था कि जो मॉर्गन स्टैनली चेज बैंक के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि रिसेशन के बावजूद स्थितियां खराब नहीं हैं बिजनेस की. तो उनका ये मतलब, जबकि उनका है ना, रिसेशन नहीं है, अगर होता है तो तब भी, तो ही वॉज पॉजिटिव. एट द सेम टाइम ही वॉज पॉजिटिव इन इंडिया ऑल्सो. तो उस तरह से अगर हम देखें, और जो दुनिया के तमाम सारे इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं. इंडियन बॉन्ड्स अब रजिस्टर हो रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, उसका इम्पैक्ट है. लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जिसे हमारा मार्केट है उसमें एक ये भी हुआ कि अच्छा डेप्थ और एक स्प्रेड आया है.
जी,
पहले क्या था कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफपीआईज एंड एफआईज, उनका मार्केट को डोमिनेट करने का एक माहौल रहता था, और उसमें कोई उनके फैसले में बदलाव आता था और सीधा मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट लगता था. लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि मार्केट ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो जो आम निवेशक है उसको मार्केट एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लगता है. तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो डिमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, म्यूचुअल फंड्स में
अनप्रेसिडेंटेड
फ्लो बहुत लगातार बढ़ा है, क्योंकि वहां से रिटर्न आ रहा है.
right.
तो इसलिए मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है वो काफी ज्यादा हो गया और डाइवर्सिफाई हो गया है. दैट्स वाई इंडियन मार्केट को जो एक स्ट्रेंथ मिली है उसके पीछे ये सब फैक्टर्स.
इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, अगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट का अपने आप में बहुत ही महत्व है. खासतौर पर जो चीजें हमें चाहिए या हम दूसरे देशों को देते हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं वहां के, उन हालातों को देख करके हर एक देश तो वैसे भी सावधानीपूर्वक कदम रख रहा है. हमारे लिए क्या चैलेंजेस हम मानते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से?
देखिये, अभी जो जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है. इसराइल के साथ हमारे स्ट्रेटजिक या डिफेंस के कुछ उस तरीके के ऑपरेशन हैं, वो अपनी तरह से चलते रहते हैं.
जी.
और जो मिडिल ईस्ट में बाकी जो कंट्री, जैसे ईरान एक हमारा अच्छा पार्टनर रहता है, खासतौर से बासमती एक्सपोर्ट को लेकर के, और दूसरे हम काफी सारा फर्टिलाइजर इम्पोर्ट करते हैं.
बिल्कुल.
जो वहां के जो कंट्रीज हैं, مڈل ایسٹ کے ہو, سعودی ہو یا جورڈن ہو یا ٹینیشیا ہو یا اس طریقے کے کئی سارے عمان ہو, تو یہ اگر وہاں انسٹیبلٹی آتی ہے تو ہمیں تھوڑا اس سے تھوڑا چنتا پیدا ہوتی ہے. دوسرے جو مڈل ایسٹ ہے خاص طور سے یو اے ای, وہ ہمارے لیے ٹریڈ کا ایک بڑا ٹرانزٹ ہب ہے
جی.
وہ گیٹ وے ہے افریقہ کے لیے اور باقی مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے, وہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے. تو ابھی وہاں کوئی استھتیاں ویسی نہیں ہوئی ہیں جو ہمارا جو نارمل ٹریڈ اور جو ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سے پربھاوت ہو. پچھلے دنوں جو تھوڑا ایک دقت آئی تھی یمن کے جو ودروہی تھے ان کی وجہ سے, بٹ وہ پوری دنیا کے لیے تھا کہ اس سے کچھ کاسٹ بڑھ سکتی تھی, وہاں پہ جو روٹ ہیں ہمارے شپس وغیرہ کے لیے جو, وہ پوری دنیا کے لیے ہے, لیکن وہ لگ بھگ کنٹرول ہو گیا اس کے بعد جب یہ جو کنٹریز ہیں یو ایس اینڈ یوروپ جب ایکٹیو ہوئے تھے. تو اب بھی بہت ہی جو کانفلکٹ ہے وہ تھوڑا لمیٹڈ ہے اور دونوں طرف سے ریسٹرینٹ بھی ہے, اس لیے اس کو ایسکلیٹ ہونے سے دنیا بچانا چاہتی ہے. اسرائیل ایران ہو, باقی غازہ میں جو ہو رہا ہے وہ لوکلائز ہے اور اس سے ہمارے اس طریقے کے جو اکنامک جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوتے. ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں اور دوسرے ہیں وہ ایک گلوبل ڈپلومیسی کے مسئلے ہیں.
A very interesting fact, Sensex closed with a loss of 609 points or 0.82% as our report says, but mid-cap sector jumped 0.83% and small-cap sector gained by 0.27%. We just talked about the fact that now unprecedented number of DMAT accounts has been opened by the Indians, which shows a greater confidence in the Indian markets. How do you assume this? Do you think that there is again a greater confidence in the mid-cap and small-cap as well? Earlier people would say, okay, blue chips, yeah, large-cap and that's it.
Yes, actually the valuation plays an important role here. The cost of the stocks has gone very high, blue chip and main successive stocks. So those who are investing a small amount, for them mid-cap and small-caps are always attractive because they have the good option to get stocks at a reasonable price.
Mm-hmm.
And experts talks about that market is overheated or some stock value is not within that range where it should be.
Mm-hmm.
So in that case, investors or even because all investors are not directly investing in even into mid cap or small cap, but through mutual fund schemes.
Okay.
So maybe the institutional investors, those who invest or take call of investment on behalf of the large number of investors, small investors, those who are investing through SIP.
Mm.
So they may be feeling that this is the attractive, these are the attractive stocks, so that there is opportunity to get better value in coming future by investing into those stocks.
ہرویر جی, ابھی آپ نے فرٹیلائزر کا ذکر کیا تھا, بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے ہوتا ہے ہمارے ایگریکلچر میں, اور ایک چیز اور اس میں میں جوڑنا چاہوں گا, جب ہمارے یہاں نئی سرکار بنے گی, جس سمے نئی سرکار چنی جائے گی اسی سمے لگ بھگ مانسون بھی ہمارے دیش میں آ رہا ہوگا, دونوں ہی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی, تو کیسے دیکھتے ہیں ان پرستھتیوں کو آگے کے لیے ہماری کراپس کے لیے اور جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, خاص طور پہ جب ہم ایف ایم سی جی سیکٹرز کی بات کرتے ہیں شیئر بازار کے نظریے سے اگر دیکھیں تو.
دیکھیے جس طرح کا مانسون فور کاسٹ ہے, لائک اس کا ریویو ابھی آئے گا, پھر سے ایم ڈی اس کو ریویو کرے گا اور کس طریقے سے آن سیٹ ہوتا ہے مانسون, جو ہم لوگ 1 جون کی ڈیٹ مانتے ہیں کیرلا میں
جی,
تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں, لیکن جو ابھی کا فور کاسٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سامانیہ مانسون ہے, اور سامانیہ مانسون ہونے کا مطلب ہے کہ ایک اچھا خریف کا کراپ پروڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں, اور بہتر کراپ پروڈکشن کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ انکم ہونا رورل اکانومی میں اور ایگریکلچر میں, اور ان کو وہاں پر جب انکم ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے باقی اکانومی کے سیکٹر کے لیے. دوسرے بہتر پروڈکشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے, جو کہ اکانومی کے لیے اچھا ہے. یعنی اگر آپ کا انفلیشن کنٹرول رہے گا تو ریزرو بینک کو کنسیڈریشن میں آ سکتا ہے کہ وہ جو پالیسی ریٹس ہیں ان کو لے کر کے کیا ڈیسیزن لے, جو ابھی تک وہ اس کو ٹچ نہیں کر رہے, جب تک بڑھایا تھا اس کے بعد اس کو اسٹیٹس کو رکھے ہوئے کئی بار سے. تو لو انٹرسٹ ریٹ اکنامک گروتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے, تو یہ एक दूसरे से जुड़ी एक चीजें हैं जो कि इस तरह के फैक्टर हैं जो इकोनॉमी को पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं।
और अब रुपए पे हम नजर डालते हैं तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83.35 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 105.70 पर कारोबार कर रहा था। और अब एशियाई यूरोपीय बाजार की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख देखा गया। केवल सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.23% की गिरावट आई। हांगकांग शेयर बाजार के हेंगसेंग में 2.08% का उछाल आया। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1.16% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.04% तथा जापान के निक्केई सूचकांक में 0.81% की बढ़ोतरी हुई। यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.73%, लंदन का फुटसी 0.32% और फ्रांस का कैक 0.48% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहा था। अगर एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार की हम बात करें तो केवल सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.23% की गिरावट थी, बाकी सभी हरे निशान के साथ में ही बंद हुए। वहीं भारत में ये रुख नेगेटिव रहा है, ये दोनों ही अलग पर्सपेक्टिव देख रहे हैं हम।
देखिए, एक तो मुझे लगता है कि एक तो जो क्लू यूएस मार्केट से है उसने हमने लिया, और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो एशियन मार्केट है वो हमसे पहले खुलते हैं
जी,
और यूरोप के हमसे बाद में खुलते हैं। और क्या होता है कि मार्केट में जरूरी नहीं कि हमेशा ग्लोबल फैक्टर ही अपना रोल अदा करें, वहां की इकोनॉमी और उनका जो स्थानीय इशू होते हैं उस देश के वो भी फैक्टर उनके होते हैं। तो इसलिए ये अब देख रहे हैं कि बाकी स्टॉक्स ने अच्छा किया लेकिन सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स जो है उसने अच्छा नहीं किया। तो धीरे धीरे बेसिकली एज आई सेड दैट मे बी कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स बिहाइंड दैट।
Harvey, there is I want to ask you this question. Nikhil just talked about the rupee. On the one hand, our Sensex has been really good overall, having touched 75 and robust. But the rupee has been weakening. Do you see a dichotomy there?
No, actually,
against the US dollar,
dollar index is strengthening against all the economy or currencies. So whenever dollar index get strengthened, so other currencies get weaker, start weakening. So rupee is not a single out case in that. Other currencies are also weakening. And whenever there is more and more demand for dollar, so that increase the dollar index upwardly.
हरवीर जी, एक इसी से जुड़ा प्रश्न मेरे जहन में आ गया। अभी जो चाइनीज कंपनी टिकटॉक जो ऐप है, यूएस प्रेसिडेंट ने उसको मतलब या तो बंद करने का या फिर किसी अमरीकी कंपनी को बेचने का ऑर्डर जारी कर दिया है। वैसे भी मतलब खबरें इस तरह की आती रहती कि दोनों देशों के बीच में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न कुछ इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, इसका असर भी पड़ सकता है क्या मार्केट पर?
देखिए, ये टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी का मुद्दा है
जी।
यूएस में टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप हुई है और उसमें से और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत बड़ा काम जो चाइना ने किया है, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके काफी सारा टेक्नोलॉजी अपने यहां डेवलप किया। तो ये एक वहां पर इसको लेकर के झगड़ा चलता रहता है। और टिकटॉक में यह था कि वो वहां का डेटा, जो इंडिविजुअल जो यूजर है उनका डेटा चाइना में जा रहा है क्या, वो कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। वेन एवर एनी यूजर इज डूइंग एनीथिंग ऑन हिज और हर डिवाइस, उसका बिहेवियर क्या है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके फ्यूचर में किस तरह का उनकी जरूरतें हो सकती हैं, क्या वो सोचते हैं, ठीक है, तो कंपनियां उस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप भी करती हैं, उसका ट्रेडिंग भी होती है। सो डेटा इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑल्सो। तो इसलिए उनका कहना है कि ये स्पाइंग कर सकते हैं क्या, तो वो तो बाकायदा कानून साइन किया है यूएस प्रेसिडेंट ने कि या तो आप इसको इंडियन वहां के अमेरिकन कंपनी को बेच दीजिए, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। हमारे यहां तो पहले ही बंद कर दिया गया था उसको। दूसरे ये भी है कि अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जिसके पास ज्यादा है और उस जहां ज्यादा इस्तेमाल होगी वो इकोनॉमी ज्यादा एम्पावर होगी। अभी भी अगर आप देखें कि दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है, या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पर टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि एप्पल में
जी।
तो ये, या अभी आप देखो जो एआई की जो चिप बनाने वाली कंपनी है उसका वैल्यूएशन इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ. तो ये टेक्नोलॉजी का एक सुप्रीमेसी का वॉर भी है एक तरह से. और चाइनीज कंपनीज काफी एडवांस स्टेज में जा रही है टेक्नोलॉजी में. आपने टेलीकॉम में पहले ये भी था कि हुआवे को लेकर काफी लंबा झगड़ा चला और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को काफी टेंशन भी ला रही है उनके बीच में. तो एक ब्लॉक है यूरोप के कंट्रीज एंड यूएस और दूसरी तरफ चाइना. बट ये भी बात है कि जो चाइनीज इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो वहां पे भी जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनको अपना मार्केट दिखता है, तो इसीलिए आप उनको अलग थलग भी नहीं कर सकते. तो ये इसलिए ये सब ऊपर नीचे का गेम चल रहा है और चलता रहेगा.
तो इसमें फायदा उठाने वाला अप्रोच किसका हो सकता है?
नेचुरली ये एक प्रोटेक्शन है यूएस का अपने सिटीजन्स के लिए और अपनी कंपनीज के लिए भी.
All right, let's take a look at the U.S. markets. You were talking about data. It is said data is the new oil now. All right. U.S. stocks fell sharply after a lower-than-expected reading on U.S. GDP for the first quarter. The key stocks ended mixed yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 0.11%, while the Nasdaq Composite fell 0.64%, and S&P 500 slipped 0.46%. How do you see the U.S. stocks going?
No, I think it is directly related to the number of economic development or growth.
Oil prices rose today on track to end higher this week after two straight weeks of losses after a top U.S. official expressed optimism over economic growth and as supply concerns linger due to conflict in West Asia. The Brent crude oil futures was higher at $89.58, whereas Western Texas Intermediate was up at $84.18 when reports last came in. Where do you see the oil going, Harveer? Because as you said, that 80% of our oil is imported and India is still, although we have diversified into electrical energy and nuclear energy, 6% of our energy needs are through nuclear energy, but still we are, still oil is a big expense.
Definitely, and because Indian economy is growing, so in a growing economy, our need for energy is also growing.
Right.
So we may try our best to have more and more self-sufficiency to meet our energy requirement, but we cannot go away from this huge imports of energy, whether it is oil or gas, both. And but at the same time, we are also trying other options like green energy. And as you said, that ethanol blending program is also one of the important programs to reduce the dependency on imports. And it is a clean fuel also. So that's why we have targeted 20% ethanol blending program in petrol from 25-26. We have crossed more than 10% of percentage point blending percent. So, and at the same time, we are also going for solar energy and wind energy. Whatever options are available for alternate energy sources, so we are also deploying huge investment into these options to get energy from that side. But at the same time, oil is important for us. And due to this, as we were already discussing regarding tension in Middle East, and if there is an upwardly growth in big economies, US or China, so then demand for energy will also increase. So all these sectors have direct impact on the price of crude.
हरवीर जी, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग की, तो इसका जाहिर सी बात है कि असर इसका हमारी प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है गन्ने की बात अगर हम करते हैं, तो कैसे देखते हैं कि इसका फ्यूचर और कितना ब्राइट होगा हमारे लिए?
देखिए, बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि हमारे देश में जो गन्ना अभी उत्पादन हम लोग कर रहे हैं उससे जो चीनी बन रही है वो चीनी हमारी जरूरत से ज्यादा है. हमारे पास ऑप्शन ही है तो हम चीनी निर्यात करें, जो कि हमने पिछले दिनों काफी चीनी निर्यात की है. हम लोग दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए एक टाइम में चीनी के. लेकिन चीनी निर्यात करना एक ऑप्शन है, और उसमें अगेन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो रोल अदा करते हैं. मान लिया जो बड़े एक्सपोर्टर हैं चीनी के, ब्राजील है, तो ब्राजील में अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और ग्लोबल मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो हमें प्राइसेस उतना नहीं मिलेगा. बट यहां क्या है कि अब تمام سارے جو یونٹس ہیں شوگر پروڈکشن کے ان کے ساتھ میں گورنمنٹ نے کافی سارا انسینٹیو دے کر کے ڈسٹلریز لگوائی ہیں. ڈسٹلری کی کیپیسٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو کہ مولاسس بیسڈ ایتھنول بن سکتا ہے اور ڈائریکٹ کین جوس سے ایتھنول بن سکتا ہے. یعنی آپ کو چینی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو برازیل بھی یہ کرتا رہا ہے.
okay.
کہ جب لگتا ہے کہ چینی کا زیادہ پروڈکشن ہو رہا ہے تو آپ مت کیجیے, آپ سیدھا ایتھنول بنائیے. سو پچھلے سال ہم نے قریب 45 لاکھ ٹن چینی کی جگہ ایتھنول بنایا.
اوکے.
سو کیونکہ ہمارے پاس اتنا پروڈکشن شوگر کین کا تھا, سو ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے اچھا ہے کیونکہ گلٹ نہیں ہوگا چینی کا, اس سے دام زیادہ نہیں گریں گے. کسانوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ جو شوگر مل ہے وہ شوگر کین خریدے گی لیکن ایتھنول بنا کر کے آپ کو پیمنٹ کر دے گی, اور ان کا جو ریونیو کا جو اسٹریم ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں وہ ایک نشچت سمے بدھ طریقے سے شوگر ملز کو واپس پیمنٹ کرتی ہے جو ایتھنول خریدتی ہیں. اس کا ایک اینوئل کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ اپنا پورا سب کے ساتھ کرتے ہیں جو پروڈیوسر ہیں, اور پھر اس کا سپلائی چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک نیا ایکو سسٹم بن رہا ہے, اور یہ شوگر انڈسٹری جو ہے اور ایون شوگر کین کی کراپ ایک انرجی کراپ کی طرف جا رہی ہے. ساتھ میں ہم لوگ گرین بیسڈ ریفائنریز بھی ہم نے لگائی ہیں, ڈسٹریز لگائی ہیں, تو جو گرین کا ایکسٹرا ہمارے پاس پروڈکشن ہوگا وہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں. وہ مکہ کا ہو یا ایون رائس کا ہو, چاول کا, وہ بھی گرین بیسڈ جو ڈسٹلریز ہیں وہ ایتھنول بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور وہ ایتھنول ہم جو ہمارا ایتھنول بلینڈنگ پروگرام ہے اس میں خرید کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں.
اور اب گولڈ میں نظر ڈالتے ہیں. ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج میں وائدہ کاروبار کے لیے سونا آج بڑھت کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا. اس قیمتی دھاتوں کا مولیہ 428 روپے یعنی کہ 0.60% کی تیزی کے ساتھ 71,642 روپے پرتی 10 گرام کے استر پر درج ہوا. وہیں جولائی انبند کے لیے چاندی 503 روپے یعنی کہ 0.61% کے اچھال کے ساتھ 82,920 روپے پرتی کلو گرام کے استر پر کاروبار کر رہی تھی. انتراشٹریہ بازاروں میں سونا دن کے کاروبار کے دوران 0.76% کے اچھال کے ساتھ $2,360.20 پرتی اونس کے استر پر رہا. چاندی بھی 1.04% کی بڑھت سے $27.92 پرتی اونس پر کاروبار کر رہی تھی.
The US has once again included India in the priority watch list of countries for alleged problems related to IP protection and enforcement. India, along with Argentina, Chile, China, Indonesia, Russia and Venezuela have been placed on the 2024 Special 301 report on the adequacy and effectiveness of US trading partners' protection and enforcement of intellectual property rights released by the US Trade Representative yesterday. While there has been progress under the US-India Trade Policy Forum in addressing certain issues with trademark infringement investigations and pre-grant opposition proceedings, numerous long-standing concerns remain, the USTR reports. Said. New Delhi, however, has always maintained that its intellectual property laws were in strict adherence to the WTO's trade-related intellectual property rights TRIPS agreement and that it was not bound by any global rules to make changes in its laws. The USTR releases the Special 301 report annually, highlighting the state of IP protection and enforcement regimes in various countries it trades with. How do you interpret this report? Very technical term.
Actually, IP issues are always debatable.
Mm-hmm.
So, definitely, US always try to protect its companies and intellectual property, even individuals also.
Mm-hmm.
And we have our own regime, but our regime is also very vibrant and it protects the right of the inventor or whoever has the right of this patent or so.
Mm-hmm.
So I think they must be having their own thinking about that, but we are good on our side to implement our on these intellectual property obligations.
Harveer ji, humse charcha karne ke liye, karyakram mein shamil hone ke liye, aapka bahut bahut dhanyawad.
Dhanyawad.
And before we wind up, friends, here's a reminder of the headlines. Indian markets snap 5-day winning run with Nifty below 22,450. Sensex falls 609 points. Oil prices spiked as supply concerns lingered due to conflicts in the West Asia. Brent crude was trading at $89.58 per barrel. And gold gains 428 rupees in futures trade. Silver rises by 503 rupees. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Nikhil Kumar bidding adieu. Namaskar.
Namaskar.